कल हमने देखा विश्व कल्याण करी बाप दादा अपने, किसको देख रहे मास्टर, विश्व कल्याण करी बच्चों को। लक्ष्य सभी का एक है परंतु लक्षण अलग अलग है। जबकि बाप एक, ज्ञान एक, योग एक, दिव्य गुण धारण करने का प्रत्यक्ष प्रमाण साकार ब्रह्मा बाप भी एक, सेवा के साधन और सेवा की विधि सिखाने वाला भी एक, फिर भी पालना और पढ़ाई दोनों ही देने वाला एक, और उसमें फिर नंबर है। तो अपने इसका कारण बताया, एक ही आधार है, एक ही शब्द है पॉइंट। पॉइंट स्वरूप का अनुभव करना एक, दूसरा कोई भी संकल्प बोल और कर्म व्यर्थ है उसको पॉइंट लगाना, और तीसरा ज्ञान की अवधारणा की अनेक पॉइंट्स को मनन कर स्व प्रति व सेवा प्रति समय पर कार्य में लगाना। इसके लिए बाबा ने कहा था अटेंशन, और बाबा यहाँ बता रहे थे महसूसता की शक्ति माया क्या करती है, विशेष मन पर और बुद्धि पर वार करती है। मन में क्या करती है, निगेटिव भाव और भावना पैदा करती है, और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। अभी आगे, जैसे कोई सीजन होती है ना, तो सीजन से बचने के लिए उसी प्रमाण विशेष अटेंशन रखा जाता है। जैसे बारिश आएगी तो छाते, रेनकोट आदि का अटेंशन रखेंगे। सर्दी आएंगी तो गर्म कपड़े रखेंगे, अटेंशन देंगे ना, तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े। इसके लिए पहले ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है, एक ही पॉइंट शब्द। सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं है। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। तो सबसे पहला पॉइंट है मैं आत्मा। बाबा उसके लिए कहते हैं कि मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं है। संडे कहा था ना बाबा ने, चेकिंग में लग जाते हैं। कौन सी चेकिंग, मैं देह नहीं आत्मा हूं, बस यहीं तक रह जाते हैं। पर उसमें पूर्ण रीति अगर टिक जाए तो आत्मा को तुरंत अपना घर याद आ जाए और वहां दौड़ कर चली जाए। लगाना फिर दूसरा है, अब तक जो कुछ हुआ पूर्ण विराम, उसका कोई चिंतन नहीं, उसका कोई पश्चाताप नहीं। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, ये सब क्या है, क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य। ऐसा भी होता है कि पॉइंट लगाना सहज है या आश्चर्य की निशानी व क्वेश्चन मार्क की निशानी, क्या सहज है?
लिखने
में इजी है, बाबा तो कहते हैं अंधा व्यक्ति भी पॉइंट लगा सकता है, और तुम तो त्रिनेत्री, तुम पॉइंट नहीं लगा सकते।
लिखना तो सहज होता है, लेकिन मुश्किल
पॉइंट
को भूल जाना चाहिए। क्या सहज है, बिंदी लगाना सहज है ना, फिर क्वेश्चन और आश्चर्य में क्यों चले जाते हैं? कई आत्माएं भूत के प्रभाव से अब तक मुक्त नहीं हुई है, अज्ञान काल का नहीं, ज्ञान काल का। ज्ञान में आने के बाद जो कुछ हुआ है, अच्छा कभी बुरा, जो कुछ हुआ है उसके ही चिंतन में रहती है, उसके चिंतन से अब तक मुक्त नहीं है, उसके बारे में अभी तक मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इस विधि को अपनाओ। फिर सीजन है झूठ, सच सिद्ध होने का और झूठ सत्य से भी स्पष्ट और आकर्षक वाला होता है। जैसे आजकल का फैशन है ना, झूठी चीज कितनी आकर्षण वाली होती है, उसके आगे सच्चे की वैल्यू कम हो जाती है। रियल सिल्वर देखो और व्हाइट सिल्वर देखो, क्या सुंदर लगेगा। रियल सिल्वर काला हो जाएगा और व्हाइट सिल्वर सदा चमकता रहेगा। तो आकर्षण व्हाइट सिल्वर करेगा या रियल करेगा? तो सीजन को पहचानो, माया के स्वरूप को पहचानो, प्रकृति के तमोगुण के विभिन्न भिन्न भिन्न रंगत को पहचानो। बाबा कहते हैं ये सीजन कौन सा सीजन है? यहाँ पर झूठ का बोलबाला है, असत्य का बोलबाला है, चारों तरफ असत्य ही असत्य है, जहां तहां असत्य की विजय है। माया के स्वरूप को पहचान। माया हर दिन एक अपना नया रूप धारण कराती है। प्रकृति के तमोगुण के भिन्न भिन्न रंगत को पहचाना। एक है जानना, दूसरा है पहचानना। जान तो लिया परंतु पहचाना नहीं। जानते ज्यादा हो, पहचानने में कभी गलती कर देते हो, कभी राइट कर देते हो। अभी क्या करेंगे, सेफ रहेंगे ना? फिर ये नहीं कहना कि हमने तो समझा नहीं, ऐसा भी होता है क्या? जानना अर्थात केवल इंफॉर्मेशन, पहचानना समझ, पहचानना अर्थात समझ और ज्ञान की बातें है वहां पर। जैसे ज्ञान और इन्फॉर्मेशन में अंतर है, नॉलेज और इन्फॉर्मेशन। एक है नॉलेज रहना, इन्फॉर्मेशन रहना, ये चीज ऐसी ऐसी है। जैसे हम कहीं गए नहीं है पर खाली हमको नॉलेज है, कोई माउंट अबू आया नहीं है पर उसे पता है यहाँ ये है, यहाँ ये है, इन्फॉर्मेशन है, निकाल लिए। पर दूसरा है उसके पास ज्ञान है जो वहां रहा है, वही अंतर उसमें भी है, जानने में और पहचानने में। जो अंतर सूचना और ज्ञान में है, यह क्या क्या नहीं चलेगा। अभी तो फिर भी बाप थोड़ा थोड़ा रहम करता है, थोड़ा थोड़ा कदम उठाता है, लेकिन फिर क्या और क्यों कोई नहीं सुनेगा। ऐसा नहीं वैसा, ये वकालत नहीं चलेगी। जज बनो, माया का वकील नहीं बनो। बहुत मजा आता है जब वकालत करते हो। अनुभवी तो सब होना, अनुभव होता है ना, सुन सुन कर साक्षी को हर्षित होते रहते हैं। अच्छी तरह से समझा पांडवों ने, शक्तियों ने समझा, टीचर्स ने समझा, सभी हा हा तो कर रहे, फोटो निकाल रहा है। हाँ तो क्या कह रहे हैं बाबा, पॉइंट सबसे पहला पॉइंट स्वयं को आत्मा समझना। पर केवल समझना नहीं, उसमें टिकना, उसका गहन अनुभव करना, स्वयं को देह से न्यारा, स्वयं को देह से अलग अनुभव करने के लिए देह की बहुत सारी आसक्तियों का त्याग करना पड़ेगा। जब तक वो आसक्तियां है देह हमें, देह में, तब तक हम अपने अपने अलग स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकते। और इस आत्मा को सबसे ज्यादा आसक्ति देह में, और देह की सबसे ज्यादा आसक्ति किसमें है? कौन से पदार्थ? खान पान। सबसे ज्यादा आसक्ति किसमें है? भोजन में। जब तक आत्मा भोजन की आसक्ति से मुक्त नहीं होती है,
तो करना तो पड़ेगा ना भोजन।
नहीं भी करो तो कुछ नहीं होगा, और शक्ति भर जाएगी। उपवास का बहुत महत्व बताया है भारतीय संस्कृति में और शास्त्रों में। जब व्यक्ति उपवास करता है तो उसमें पावर आ जाती है, इमोशनल क्लैरिटी आ जाती है, देह से न्यारा होने का अनुभव उसका बढ़ जाता है।
मानस का पापा बोलते थे, हफ्ता में एक बार उपवास करो तो सारा शरीर का ऑयलिंग हो जाएगा, जैसा साइकिल
डिटॉक्स जिसको कहते हैं, जो भी अशुद्धियां है वो निष्कासन हो जाएगा उनका। तो ये जो भी संयम है, निग्रह है, उनका बहुत महत्व है, क्योंकि आत्मा की भोजन में बहुत आसक्ति है, पदार्थों में बहुत आसक्ति है, संसार की वस्तुओं में आसक्ति है, संबंधों में आसक्ति, वो तो है, परंतु सबसे ज्यादा आसक्ति उसकी भोजन में है। उसको अगर वहां कट कर दिया तो आत्मा को निरंतर अपने न्यारेपन का अनुभव होते रहेगा। तो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना सबसे पहला पाठ इस विश्वविद्यालय का। मैं आत्मा हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं, ये आगे का प्रश्न है। परंतु मैं आत्मा हूं, ये देह मैं नहीं हूं।
लेकिन ये हो सकता है कि आत्मा में स्थित होगी लेकिन मुझे काटा कुछ तो पता नहीं चलेगा, हो सकता
है। ऐसा भी हो सकता है, हमने देखा है एक
अरे इधर कोई
आश्रम में एक महाराज प्रवचन दे रहे थे, उनका पूरा पैर जो था उसमें बहुत सारी मक्खियां पूरी बैठ गई थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो मोजा है। परंतु बाद में जब प्रवचन खत्म हुआ तो सब मक्खियां उड़ी, तब तक उनका प्रवचन चालू था। जो भी है, हर वो चीज जो हमको देह से न्यारा करती है वो हमें करनी है। हर वो चीज जो हमें देह से न्यारा होने का अनुभव कराती है उसका हमें पालन करना है। हर वो चीज जो हमें देह से आसक्त करती है उससे हमें थोड़ा ऊपर जाना है। दिन भर ये खाऊं वो खाऊं, ये करूं ये करूं, ये बनाओ वो बनाओ, आत्मा जितनी भोजन में आ सकता है वो आत्मिक स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता है। एक एक साधु हमारी ओपड़ी में आया था, वो कहता था कि तुम लोग तुम क्या योगी बनोगे तीन बार भोजन करते हो और चार बार डोली खाते हो उसको सब पता था इधर क्या क्या है।
बहुत है भोजन में आसक्ति है।
जब तक वो आसक्ति से आत्मा मुक्त नहीं होती है उसके लिए बीच बीच में इससे ऊपर हम जाना पड़ेगा।
इसे ठीक करो ना, कैसे
किसी ने जगदीश भाई से पूछा था कि आप तो कहते हो भोजन में बहुत संयम रहना चाहिए, यहाँ तो कितना सारा भोजन है अलग अलग भिन्न भिन्न वेराइटी का, क्या करे? उन्होंने कहा कि तुमको किसने बोला खाने के लिए
भोजन देखो एकदम ठीक
सब कुछ है यहाँ
आपको खिलाएंगे
जितनी उसमें आसक्ति है। अगर कोई ये भी कहता है कि हमारी आसक्ति तो नहीं है, हम बाबा को भोग लगा के खाते हैं, ऐसा भी कहने वाले हैं, एक दिन उनको उससे मुक्त करके देखो क्या अवस्था रहती है। फिर अगर हलचल है तो समझना आसक्ति है।
पचास बार कहते रहेंगे मैं खाया नहीं खाया नहीं खाया नहीं।
सबसे ज्यादा आसक्ति जो आत्मा की है वो भोजन में है। जब तक वो इस आसक्ति से मुक्त नहीं होती उसे आत्मिक स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। अध्यात्म में उन्नति के लिए इस आसक्ति से रसेन, ये जो रस है कर्मेंद्रियों के, अगर इस जीव को वश में कर लिया जाए तो बाकी सारी कर्मेंद्रियां ढीली पड़ जाएगी। अगर जीव को वश में कर लिया जाए तो आप ही जीव और मुख दोनों बोलना, अगर चुप हो जाए कोई मौन में चला जाए तो दिव्य अनुभूति चालू हो जाएगी स्वतः ही। बहुत सारी वेस्ट जो होती है वो समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हम जितना बोलते हैं सारे दिन भर अगर हम अपना विश्लेषण करें तो पता चलेगा उतना बोलने की आवश्यकता नहीं है। पर आदतन बोल है, आदत पड़ गई है। जितना हम खा रहे उतना हमें शरीर को आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ एक जैन पेशेंट आया था, वो दो दिन में एक ही बार भोजन करता था, पानी भी नहीं, और प्रकृति एकदम चुस्त। वो किसी और कारण से भर्ती हुआ था परंतु अन्यथा वो बहुत ही स्वस्थ था। बीमार कम खाने से नहीं, ज्यादा खाने से होती। तो सबसे पहला अभ्यास है आत्मिक स्वरूप में स्थित होने का। एक जितना आत्मा को ये सब जो भोजन तीन प्रकार के बताए हैं, सतो रजोतमो, सतो में सब फलाहार दूध और ये सब आता है, तमो और रजो में ये सब आता है। रजो में जो बहुत ही चटपटा है, जिसमें तेल बहुत है, जिसमें मिर्च मसाला बहुत है, जिसमें नमक है, नमक भी कामोत्तेजक है, जिसे नमक से बहुत प्रीत है वो संपूर्ण पवित्रता का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें भी उत्तेजना है, प्याज लहसुन तो छोड़ दिया, परंतु ये जो भी है जितना जिसमें तेल डाला जाता है उतना वो टेस्टी बनता है। एक है सादा चावल, उसको फिर चावल को थोड़ा छोक भी लगाओ तो, पहले चावल को इतना खाएंगे अगर छोक लगाओ तो थोड़ा ज्यादा जाता है। ज्यादा खाने की इच्छा होना ये आ सकती है। फीका एक्सपेरिमेंट करके देखो, हफ्ते में 2 दिन फीका खा के देखो।
हफ्ता में हम तो 12 महीना खा रहे,
तो फिर आप परम योगी हो।
परंतु
एक ये भी बात है कि भोजन ही सब कुछ नहीं है, ये भी सारी चीजें साथ साथ होनी चाहिए। एग्जाम में अगर 10 मार्क्स है तो 1 मार्क उसके है। अगर हम 9 चीजें कर रहे हैं वो एक चीज भोजन वाली चीज नहीं कर रहे तो हमको 9 मार्क्स मिलेंगे, वो 1 मार्क नहीं मिलेगा। पर कोई अगर कहते खाली भोजन ही सब कुछ, ऐसा भी नहीं है। वो खाली भोजन केवल उपवास कर रहे हैं या फिर भोजन फीका खा रहे हैं या केवल फल खा रहे हैं तो केवल वो कर रहे, पर बाकी साधनाएं नहीं कर रहे, ज्ञान का चिंतन मनन अध्ययन योग तपस्या, तो भी स्थिति नहीं बनेगी। सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए, वो भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी सब कुछ एक साथ, तो पता चले हम कहाँ हैं। तो अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होने के लिए आत्मा को इस देह से जो आसक्ति है उससे मुक्त होना होगा। आत्मा और देह ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे कि उसको अलग करना कितना मुश्किल है। हर मुरली में आता है अपने को आत्मा समझो, हर आत्मा को, पर क्यों हम नहीं समझ पा रहे? क्योंकि देह में बहुत ज्यादा आसक्ति, 100% आकर्षण है देह का। इस देह में रहकर अपने आप को देह से अलग समझना, यह सबसे ऊंचा पुरुषार्थ है इस संसार का। थोड़ा भी कुछ होता है इस देह को कितनी चिंता हो जाती है, थोड़ी बीमारी आ जाए तो हलचल में आ जाती है आत्मा, थोड़ी बीमारी भी क्या क्या संकल्प उठने लगते हैं, रोज देखते हैं हम। पर ऐसी भी कुछ आत्मा है जो बड़ी बीमारियों में भी, सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है हमारी वो बीमारी में ही होती है। कितनी हमने ऐसे आत्माओं को शरीर छोड़ते हुए देखा है कि जहां जिन्होंने योग तपस्या तो बहुत की जीवन में, परंतु उस समय बाप की याद नहीं थी, उस समय कुछ और ही चल रहा था। क्यों?
आदत पड़ी है,
आ सकती है। हमने तो एक और भी एक ऐसे बहन को देखा था। मसाला डोसा चाहिए, मसाला डोसा खाया और शरीर छोड़ा, बाबा भी याद नहीं है। एक दूसरी आत्मा थी, उसको सब बोल रहे थे बैठकर बाप को याद करो, अभी शरीर बस छूटने ही वाला है। वो कहती थी मैंने सारे उम्र भर तो किया नहीं, अब तो कहां से करूंगी, सीधा बोल दिया और शरीर छोड़ा। वो भी कोई साधारण आत्मा नहीं थी, इधर की थी। 30-40 साल से यहां रहने वाली। एक है मुरली सुनना बैठना, एक है योग करना, पर वो अंदर जा रहा है क्या? वो तो आदत पड़ गई ना, वो सब करने की आदत हो गई है, वो जैसे जीवन बन गया है। परंतु वो अंतर मन ने उन सबको स्वीकार किया है या केवल ऊपर ऊपर का है सब कुछ? हमारा ज्ञान, हमारा योग, हमारी तपस्या, हमारी सेवाएं, जो कुछ भी सेवाएं हो रही है वो तो बहुत अच्छी रही है, उसमें निर्विवाद है वो। परंतु हृदय की, हमारे आंतरिक परिवर्तन कितना हो रहा है, वो वाली बात है। इसके लिए बीमारी जब आती है तब आत्मा इतना तड़पती है, वो अशरीरी बनने का तो ख्याल ही नहीं है उसको। ज्ञान योग तो पूरा उड़ जाता है, जैसे कि कभी इसने ज्ञान किया ही नहीं, जैसे इसे बाबा कोई है पता ही नहीं। ऐसी ऐसी आत्माएं हमने देखी है, जब दर्द होता है, जब पीड़ा होती है, क्यों ऐसा होता है? तो हमें ज्ञान तो सबके पास है, परंतु उस गहराई तक हमें पहुंचना है। तभी उसका अनुभव होगा। जितना हमने समझा है उतना पर्याप्त नहीं है। केवल मुरली सुनना और सुनाना, इसको हम ज्ञान की संज्ञा देते हैं। जो मुरली सुनता है और जो मुरली सुनाता है, सुनाने वाला तो छोड़ो, जो सुनने आते हैं हम कहते हैं ज्ञान में है, या केवल जो अमृत वेला उठते हैं, ये दो क्राइटेरिया के आधार पर हम कहते हैं ये ज्ञान में है। या वेश परिवर्तन, भूषा परिवर्तन कर ली, बाहर का खाना छोड़ दिया, इसको हम ज्ञान में आना चाहते, पर ऐसा इतना आसान नहीं है। ये ज्ञान इन शब्दों में बहुत गहराई है, सामान्य से लगने वाले इन शब्दों में बहुत गहराई है। ये चैप्टर केवल यहीं खत्म नहीं होता है, तुम समझो, ये तो फर्स्ट चैप्टर है कि अपने आप को देह से भिन्न समझना, अपने आप को देह से अलग करना। बैठते ही बाबा कहते ना, चेकिंग और भरने में लग जाते, आत्मा उड़ती नहीं, एरोड्रोम पे फ्लाइट आती है, बस अराइवल हो रहा है, पर उड़ना मिलन नहीं हो पाता है मियां से, क्योंकि मिट्टी की ड्रेस है, क्योंकि मिट्टी साथ में ले जाते हो, मिट्टी से आसक्ति है, मिट्टी से प्रेम है, मिट्टी से खेलते हैं, मिट्टी को ही गले लगाते हैं। न मालूम क्या सुगंध है इस मिट्टी में, क्या टेस्ट है इस मिट्टी में, कि मिट्टी 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 ही भरा है अंतकरण में। चेतना की जो विशुद्ध अवस्था है, चेतना का जो उच्चतम स्तर है, वहां हम नहीं पहुंच रहे। चेतना के जगत में नहीं जी रहे, जड़ के जगत में जी रहे, जड़ को ही देख रहे, मिट्टी को ही देख रहे। हमारी सारी क्रियाएं इसी पर आधारित है। उस तत्व का अनुभव करना जो परम है, जो कि इस देह से भिन्न है, जो चेतना है, उसके लिए जबरदस्त साधना की आवश्यकता है। बिना साधना के यह संभव नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे। ये सहज राजयोग तो है, परंतु वो इतना सहज नहीं है। ये साधना का पथ है, कांटों पे चलने का मार्ग है। दूसरा है, पहला तो पॉइंट समझना, दूसरा पॉइंट लगाना। क्यों नहीं लगा पा रहे पॉइंट जीवन में हुई हुई बातों के? वो बार बार आती है, केवल हमने उन्हें दबाया है, परंतु वो आती रहती है। उतनी माइंड में हमारी क्लैरिटी चाहिए, स्पष्टता, तो ही वो दिखेगा। जैसे हमारी कोई निंदा करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो क्या होता है? आप नियमित अपने ड्यूटी पर आते हो, एक ही दिन नहीं आए, पिछले 10-15 साल से एग्जैक्ट टाइम पर आते हो, एक ही दिन थोड़ा लेट हुए, और उसी दिन किसी ने कहा कि ये तो हमेशा ही लेट आता है, अभी आपकी क्या रिएक्शन है? बोलो अरविंद भाई,
खुश हो जाएंगे।
वो तो ठीक है, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि आप नियमित कोई कार्य करते हो, एक ही दिन नहीं करते हो, और किसी ने कह दिया कि ये तो हमेशा ही लेट आता है। जब निंदा होती है, आलोचना होती है, क्रिटिसाइज करते हैं लोग, क्रिटिसिज्म जब होता है, वो परीक्षा की घड़ी होती है, और सबसे ज्यादा आदमी वहीं सीखता है। अगर हम ये समझे, उस क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें। हमें अगर कोई रोग होता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको बताते हैं, डॉक्टर को हमारे बारे में बहुत कम पता रहता है, हम उसको बताते हैं ना, मुझे ये हो रहा है, 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 फिर वो कहता है कि तुम ये करो, ये करो, ये करो, ये करो। वहां पे फीस देनी पड़ती है, पैसे देने पड़ते हैं हमारी अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। जो निंदक है वो हमें बताता है, और उसकी बातों में हमेशा कुछ तो सत्य होता है जरूर, पूरा झूठ तो नहीं होता है, कुछ तो सत्य होता है जरूर। हमें उसे स्वीकार करना है, अगर हम उसको स्वीकार कर ले तो हमारी बहुत ऊंची उन्नति हो जाएगी, हम उसे एक्सेप्ट कर ले तो।
उसमें कौन सा सत्य हो, 15 साल वो ठीक आ रहा है, एक ही दिन में।
हाँ तो हम अभी ये संकल्प करेंगे कि देखो फिर भी मैं एक दिन अभी नहीं आऊंगा। अगर हम यहां, तो सबसे पहला आएगा क्रोध, क्या कुछ नहीं हम कह देंगे उसे, बहुत कुछ। अभी उसने कहा, अभी उससे मिलने जा ही नहीं, अभी केवल हमने सुना, डायरेक्ट उसने हमसे नहीं कहा, हमने सुना उसने हमारे बारे में ऐसा कहा है, तो तब से हम सोचना चालू होते, योजना बनाना चालू करते कि उसे क्या क्या कहना है। अगर वो सामने आ गया, उस अवसर की तलाश में है हम कि अगर वो आ गया तो हम उसे क्या क्या कहें और क्या क्या उसे सत्य से अवगत कराए।
बहुत अच्छा बोला, और फीस पे।
तो यहाँ तो बिना कोई फीस के आलोचक जो है वो तुम्हें तो, और तुम्हें अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लो तो तुम उन्नति हो जाएगी, तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाएगी। अगर हम उसका एक दूसरा मार्ग है, विरोध करने का भी मार्ग है, उसका हम विरोध करेंगे। कबीर कहता है ना, वो तो तुम्हारा आलोचक जो है वो तुम्हारी बिना साबुन के और पानी के धुलाई कर देता है। तो यदि जीवन में क्रिटिसिज्म हो गया, किसी ने हमारा विरोध अगर करता है, तो तुरंत रिएक्ट न कर उसने जो कहा है, भले उसमें 90% झूठ है, 99% झूठ है, हमने तो कहा ये झूठ खंड है या झूठ का ही ज्यादा आकर्षण है, परंतु कुछ तो सत्य होगा, 0.5% तो सत्य होगा ना।
दूसरे का करता है, दूसरे का नहीं करता है, हमारा
ही करता है। वाई मी, मैं ही क्यों, उसमें हजार अवगुण होंगे, परंतु हमको वो सब देखने नहीं है। टीचर अर्थात संडे की मुरली कमजोरियों को ना देखेगी,
धारण नहीं
देखेगी तो धारण नहीं करेगी, चित्त पर नहीं रखेगी, वर्णन नहीं करेगी, ये है योग्य टीचर। अगर वो भी करने लगे तो टीचर और स्टूडेंट्स में अंतर क्या। तो अगर कोई विरोध करता है वो भी हमारी परीक्षा की घड़ी है, बीमार होते हैं वो परीक्षा की घड़ी है, जब कोई विरोध होता है तो परीक्षा की घड़ी है, और वो विरोध अगर ज्ञानी से हो तो परीक्षा की, वो तो बहुत बड़ी परीक्षा है, वो खतरनाक घड़ी है। पहला, विरोध का सामना करने के कई तरीके हैं। पहला एक तरीका, इग्नोर करना, ध्यान नहीं देना। जैसे हाथी जब चलता है, तुलसीदास कहते हैं हाथी जब चलता है तो कुत्ते तो भौंकते हैं, हाथी थोड़ी ना परेशान होता है ये कुत्ते मुझे क्यों भौंक रहे हैं, वो अपनी चाल में चलता है मस्त डोलते डोलते, चाहे तो एक लात मारे तो सारे कुत्ते एक तरफ। एक तो इग्नोर, दूसरा अगर विरोध होता है और हमें पता है वो असत्य है तो सत्य में शक्ति है, सत्य को, सत्य के सूर्य को असत्य के बादल छुपा नहीं सकते, तो सत्य तो स्वयं सिद्ध है। जैसे दिखाया है राम और रावण का जब युद्ध हो रहा था, रावण ने सारे आसमान पे तीर से भर दिया आसमान, राम ने एक बार मारा और वो खत्म हो गए सारे, सत्य में इतनी शक्ति है। परंतु हमें अपने सत्य पर विश्वास चाहिए, उस समय हमें सत्य पर विश्वास कम हो जाता है। लंदन में एक साधु था, उस पर एक हत्या का आरोप लगा और उसे जेल में डाल दिया, 22 साल की सजा दी। 18 साल के बाद वो जेल में रहा, 18 साल के बाद कोर्ट ने फिर निर्णय दिया कि भाई खूनी तो कोई और है, तुम निर्दोष हो, तुमने पहले तो कुछ भी नहीं कहा, वो कहा अभी तुम मुक्त हो, वो कहता है अभी मैं यहां मेरी अच्छी साधना हो रही है, यही रहने दो और 4 साल। वो तो मुझे पहले ही पता था मैं निर्दोष हूं। तो आप तो किसी हत्या की बात करें, मैंने तो किसी चींटी को भी नहीं मारा है इस जीवन में, तो तुमने बोला क्यों नहीं, वो कहता ये मेरे किसी और जन्म का हिसाब था, इस जन्म में तो मुझे पता है मैंने कुछ किया ही नहीं, फिर भी अगर परिस्थिति आ रही है और वो भी झूठ, तो हमको तो पता है ना, ये है सत्य पर विश्वास। यहां पर हमारा सत्य पर विश्वास कम हो जाता है, वो कहता है कि मुझे तो पता ही है, इसके लिए मैंने इस परिस्थिति को स्वीकार किया, प्रेम से स्वीकार किया, केवल स्वीकार नहीं किया, प्रेम से स्वीकार किया, उसका विरोध नहीं न करके, और इसके लिए इतना लंबा समय अच्छी साधना की, उसने किताबें वगैरह लिखी वहां बैठकर। अगर विरोध करता तो उसकी अपनी स्थिति डाउन होती। तो दूसरा है, एक तो इग्नोर कर देना, दूसरा है उसको एक्सेप्ट करना, तीसरा है अपनी चेकिंग करना कि मेरा इससे क्या क्या फायदा है, और जो वैसे मैंने कहा उसमें कुछ ना कुछ सत्य तो होता ही है, 0.1% तो सत्य होगा ही। उसने बोला ना तुम हमेशा लेट आते हो, आज तो लेट आया ना, मतलब हो गया ना। तो ये था दूसरा। तो बाबा ये अलग अलग क्या सुना रहे हैं यहाँ पर, एक तीसरी सीजन भी है, पहली सीजन तो मुझे समझ में नहीं आया इसमें दूसरी सीजन कौन सी है बाबा की, बाबा यहाँ कह रहे हैं तीसरी सीजन है। विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना, इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है, वो आज नहीं सुनाएंगे, आज इतना बहुत है। शायद पहला सीजन है ये आत्मा समझना, दूसरा सीजन पांच को भूलना, तीसरा सीजन ये, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो पहला बाबा यहाँ कह रहे हैं ना कि माया मन पर आक्रमण करती है, बुद्धि पर आक्रमण करती है, पहला सीजन। दूसरा सीजन है ये झूठ का, कि यहाँ पर झूठ का बोलबाला है। और तीसरा सीजन है ये विशेष कमजोरी के स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में आना, इसका विस्तार भी बहुत है, वो आज नहीं सुनाएंगे। कई बच्चे कहते हैं क्या करे, पहले तो था ही नहीं, अभी पता नहीं क्या होगा, ये संस्कार मेरे में थे ही नहीं, अभी आ गए, इसका कारण और इसकी विधि का विस्तार फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा के महावाक्य सुनने और धारण करने वाले चात्रक बच्चों को, चात्रक पक्षी होता है जो केवल ऊपर से जो पानी गिरता है वही पीता है, सर्व सब्जेक्ट को स्मृति के साथ स्वरूप में लाने वाले समीप आत्माओं को, सदा ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, ज्ञान के हर बात को लाइट और माइट के स्वरूप से कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा लक्ष्य और लक्षण समान करने वाली वाले बाप के ज्ञानी तो आत्मा बच्चों को, सदा बाप की छत्र छाया में रहने वाले, माया की छाया से सेफ रहने वाले, जानना और पहचानना दोनों की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को बाप दादा का ज्ञात प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ज्ञात प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। Thank you.